میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نوجوان جو مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا اور اچھا عبادت گزار تھا،
یونگ مین ہو یوز ٹو اسٹے ان مکہ المکرمہ اینڈ ہی واز اے گریٹ ورشپر،
ماں کا فرما بردار تھا اور روزانہ اپنی ماں کو طواف کے لیے، عبادت کے لیے مسجد الحرام لے جایا کرتا تھا۔
ہی واز این اوبیڈینٹ ٹو ہز مدر اینڈ ایوری ڈے ہی وڈ ٹیک ہز مدر فار طواف اینڈ فار عبادت ان مسجد الحرام۔
دنیا کی تعلیم بھی اس نے جاری رکھی ہوئی تھی اور اس نے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔
He was continuing with his secular education and he also applied for further studies for scholarship.
تھوڑے دنوں میں اس کا اسکالرشپ پاس ہوا اور اس کے پاس ایک لیٹر آیا کہ یورپ کے ایک ملک میں آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔
After few days his scholarship was approved and he received a letter mentioning that you are going to be sent to one of the countries in Europe for further studies.
بہت خوش ہوا، مگر اگلے لمحے اس کو خیال آیا کہ اگر میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو یہ جو میں روزانہ جا کر کعبے کا طواف کرتا ہوں، زمزم پیتا ہوں، باب کعبہ دیکھتا ہوں، مکہ میں ابراہیم دیکھتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، ان سب کا کیا بنے گا؟
He got happy but after a while he thought that if I leave Makkah al-Mukarramah then this opportunity that every day I get go to Haram Sharif, see Kaabatullah and make tawaf and make ibadat, what would happen to this?
پریشان تھا، اسی میں اس کو ٹکٹ بھی آ گیا، پاسپورٹ بھی اس کا ویزا لگ کر آ گیا اور ہر چیز اس کے لیے تیار ہو گئی۔ کنفیوز بھی تھا، جانا بھی تھا، بے تیار بھی کر رہا تھا، گھبرا بھی رہا تھا، جانے کی خوشی بھی تھی کہ میں جاؤں گا، میں ہائرلی کوالیفیکیشن حاصل کروں گا اینڈ دین انشاءاللہ میں ایک اچھا معاشرے میں میری عزت ہوگی، مگر دوسری طرف ایک افسوس بھی تھا کہ مکہ چھوڑ جائے گا۔
He was in a state of confusion. One side he was happy that his scholarship is arranged, his ticket is ready, his visa is done and if he studies he'll become somebody big, and on the other hand he was worried that he's going to leave Makkah al-Mukarramah and Haram Sharif and all the ibadats, the opportunity that he's getting, he would have to leave that.
اسی کشمکش میں تھا، لیکن ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا، ماں نے بھی رو رو کر اس کو رخصت کیا، بھائی بہنوں نے بھی رخصت کیا، بہنوں نے بھی کہا کہ بھیا فون کرتے رہنا، بات کرتے رہنا، اس نے بھی جاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو تاکید کی کہ دیکھو ماں کا خیال رکھنا، ماں کو حرم پاک لے کے جانا، مجھے شکایت نہیں آنی چاہیے ماں کی، یوں کر کے تھوڑا ایک ماحول ہوتا ہے وہ کر کے وہ آخر کار رخصت ہو گیا۔
In that state of confusion, he said goodbye to everyone. Even the mother with sad heart, she also gave him permission. He is addressing his brothers that, I'm going away now, please look after mother, do not neglect her service and khidmat.
यहाँ से एयरपोर्ट पे निकला, जहाज में बैठा और यूरोप के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे उसने लैंड किया और जैसे वो बाहर आया, वहाँ का माहौल ही कुछ और था. अरब शरीफ में पूरे कपड़े थे और यहाँ पर आधे कपड़े थे.
He traveled, he landed in one of the European countries. As he came out of the airport, he saw and he realized that the environment here is totally different. In Haram Sharif, in his surroundings, people had full clothes, and here he sees that people are wearing half clothes and they are half naked.
आपको भी इसका अंदाजा है कि आजकल का लिबास औरतों का कैसा है. तो परेशान था, लेकिन आ गया, निगाहें नीची करके चलने लगा. एयरपोर्ट से घर पहुंचा और घर से एक अगले दिन ये अपनी उस कंसर्न यूनिवर्सिटी में पहुंचा जहां पर इसको स्कॉलरशिप मिला हुआ था.
वेल ही ट्राइड टू कंट्रोल हिज गेज, लोयरिंग हिज गेज एंड रीच्ड हिज प्लेस एंड नेक्स्ट डे ही वेंट टू द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी.
जब यूनिवर्सिटी गया तो वहां का माहौल और खराब. क्लासरूम में गया तो वहां भी बेपर्दा और आधे कपड़े पहनी हुई लड़कियां थी. बहुत परेशान हो गया कि ये मैं कहां फंस गया हूं, कहां हरम पाक की वो मुकद्दस हवाएं, वो मुकद्दस फजाएं, और कहां पर ये यहां का बेशर्मी वाला और बेगैरती वाला और बेहयाई वाला माहौल. वो इसी तरह निगाह नीची करके आता गया और क्लासरूम में आकर बैठ गया, ना इधर देखता ना उधर देखता.
सो ही वेंट टू द क्लास एंड द एनवायरमेंट इन द क्लास वॉज इवन फर्दर शेमलेस. And he had to put his gaze down, and he was sitting, not looking right, left, center, anyway.
अब चंद दिन गुजरे, आंखें भी ऊपर हुई, दोस्तियां भी हुई, और फिर घुल मिलकर रहने भी लगा, हंसने बोलने भी लगा. माँ को बहनों को फोन भी करता था, लेकिन अब इजी हो गया, वो खुल गया. और फिर आहिस्ता 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 इसकी एक नीली पीली आंखों वाली लड़की से दोस्ती भी हो गई.
After a few days, he started becoming frank with people and started looking here and there, and he had friendship with people. He started sitting and talking with them. And then after a few days, he became friend with a girl with blue eyes or green eyes.
And after a few days, he took admission for learn language.
Learn the language
and more and more and more. और उसके बाद उसकी दोस्तियां हो गई और उस लड़की के साथ वो खाता पीता उठता बैठता कैंटीन में रहता. लड़की उसको लैंग्वेज सीखने में सपोर्ट भी करती और यूं लड़की के साथ उसकी दोस्ती पक्की से पक्की होती चली गई. लड़की नॉन मुस्लिम थी.
This girl became close friend with him, and she would also support him to learn the language, and they would go out together, eat out, etc., and they became close friends.
फिर लड़की इसको चंद दिनों के बाद अपने घर ले गई और अपने वालिदैन से मुलाकात कराई. वालिदैन ने भी उसको बड़ी इज्जत दी, उसको अपने दोस्तों में ले गई, उसको क्लब में ले गई, और हर जो वो जगह जहां पर नॉर्मली जाते हैं वो ले गए. क्योंकि लड़की क्रिश्चियन थी, नॉन मुस्लिम थी, जो उसका एक कल्चर था उस कल्चर में वो लड़के को लेकर चलती रही और लड़का उस लड़की के साथ भी चलता चला गया. और आहिस्ता 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 ना माँ बाप को फोन करता ना बहनों को फोन करता, वहां पर नाचता कूदता गाता और खूब मतलब उसको वो अय्याशी में लग गया. वो उसकी सारी शर्म सारी हया सारी गैरत जो थी ना वो मर गई.
This girl took him to meet her parents and her friends, and he started becoming friend with her circle of friends, and slowly he got so absorbed in that environment that he even forgot his family and parents and would not even phone them or find out how they are, where they are, what they're doing. So this is how he got lost in this new environment.
लड़की के घर में रहने लगा, एक ही साथ हो रहे थे, एक ही साथ खाते पीते। लड़की अपने कॉज पर, अपने विजन पर काम कर रही थी और उसको पूरी की तरह उसने अपनी दोस्ती में ले लिया था। लड़का भी उसके साथ पूरी दोस्ती करके आगे से आगे बढ़ रहा था। खैर, मैं आगे की बातें करता हूँ। एक दिन संडे थी, संडे को उस लड़की ने कहा कि चलो चलते हैं। कहा तो कब, चलो मेरे साथ। तो था तो वो लड़की के पीछे पागल। लड़की उसको ले गई चर्च में।
He became very close to that girl. The girl had her motive. She was busy working towards her mission. One day she advised this boy, let's go with me. He asked, where should we go? She said, don't worry, just go with me. And she took him to a church.
Plant tha, everything is planted. Wo gate par jab pahuncha to रुक गया कि ये हो क्या रहा है। मेरे पांव मस्जिदुल हराम में जाते थे, आज मैं क्या कर क्या रहा हूं।
When he reached there, he stood for a second and he thought, what has happened to me? What is going on here? I was the person who used to go to Masjidul Haram and today I'm at the door of church.
मैं काबा देखने जाता था, आज मैं क्या देखने जा रहा हूं।
I used to see Kaaba. What am I going to see today?
मैं माँ के साथ जाता था, किसके साथ जा रहा हूँ?
I used to go with the mother. With whom am I going today?
अब वो इसी सोच में था कि गेट के ऊपर चार पांच खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी, इन्होंने आगे बढ़कर वेलकम करके उसको फ्लावर पेश कर दिए।
While he was thinking that, he saw that there were four, five young girls. They came out, they welcomed him, they gave him bouquet of flowers, and they took him in.
वो फ्लावर लेता हुआ मुस्कुराता हुआ पांव अंदर रखकर आखिर दाखिल हो ही गया।
He received flowers. He was happy and smiling, and he entered the church.
थोड़ा अंदर गया, अंदर एक और खूबसूरत लड़की आई, उसने आकर उसको एक और फूल पेश किया।
He went forward, and there was another girl. She came and she gave him a flower with smile, and he accepted that.
अभी वो देख ही रहा था कि क्या हो रहा है, इतने में एक और खूबसूरत लड़की आई। उस लड़की ने आकर उसको एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स दिया। जब वो गिफ्ट बॉक्स के ऊपर से खूबसूरत सा कपड़ा हटाया गया तो उसमें स्लेब थी। उसने वो गोल्ड की स्लेब निकाली और उस नौजवान के गले में पहना दी।
Then another young girl came and she gave him a box as a gift. And when the wrap of that gift box was removed and there was a cross in that box and she put that cross around his neck.
वो उसके साथ बैठ गया।
He sat with her.
थोड़ी देर रहा और वो जो थोड़ी सी झिझक थी वो भी चली गई।
The hesitance that he felt a bit in the beginning, that was also gone.
Continue उसका रूटीन जो थी वो इसी तरह की हो गई और 7 साल गुजर गए।
And he became part of them continuously. Things were happening. 7 years were passed.
Uski scholarship khatam ho gayi, padhai puri ho gayi aur wapsi jane ka time ho gaya.
His study was completed and now it was time to go back.
Pareshan tha.
He was worried.
Ek waqt tha Makkah se aane ka dil nahi kar raha tha, aaj Makkah jane ka dil nahi kar raha tha.
There was time when his heart did not want to leave Makkah, and today his heart is not ready to go to Makkah.
Makkah time pura ho gaya tha, karta to kya karta, jana to tha hi.
But the time was up, he had to go because his scholarship and study was finished.
Jahaz mein baitha,
sat in aeroplane,
button band kiye ke andar mein jo pehni hui cheez thi nazar na aaye.
He closed the buttons of his shirt in order that people must not see the cross that he is wearing.
Jahaz badhta chala gaya apni manzil ki taraf.
The aeroplane kept flying towards his destination.
Ye khud se sawal karta hai ki main hu kaun, musalman ya isai?
So he is questioning himself, who am I? Am I Muslim or am I a Christian?
Foran jawab deta hai, main to isai ho gaya hu.
He says, I am become Christian.
परेशानी की हालत में एयरपोर्ट उतरा, माँ लेने आई, बहने लेने आई। बरसों के बाद रब्ता हुआ था, किसी से बातचीत तो करता नहीं था, सब मिले, लेकिन वो इसकी फीलिंग जो थी ना वो अजनबी की तरह थी, वो कंफ्यूज था, बता भी नहीं सकता था। कुछ कर भी नहीं सकता था, कांट हुए नहीं थी, बस कंफ्यूज कंफ्यूज था, और बस कंफ्यूज कंफ्यूज मिला और घर की तरफ चल पड़ा.
In that state of confusion, he landed. His family members came to receive him. His mother was there, sisters, brothers were there. He met them, but totally in a state of uncomfortable and uneasy.
माँ परेशान, बहनें परेशान, घर में भी अकेला अकेला बैठ रहा था. ना हरम पाक जाता, ना नमाज पढ़ने जाता, कुछ भी ना करता. वो कमरे में अकेला रहता और बस थोड़ा चक्कर लगाता, वापस आ जाता. माँ कहती, बेटा तुझे क्या हो गया है? तो तू नमाज नहीं पढ़ रहा, तू हरम पाक नहीं जा रहा, तू तवाफ करने नहीं जा रहा, बेटा तुम्हें हो क्या गया है? कहेगा, माँ इस बहस में नहीं पढ़ो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, दीन में सख्ती नहीं है माँ. और ये कहकर माँ को इसने टल दिया.
He started living there and he was totally unfriendly with everybody around him. He would stay lonely, and when mother talks to him that you used to go to Haram Sharif, you used to go for tawaf and ibadat, what has happened to you? Why you don't go anymore? So he would reply, mother, leave this issue. There is no hardship or sternness in the religion. So you do your business and I do my business.
ये मुस्लिमों की सोबत ने उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसकी आंखों को, उसकी हया को, उसकी गैरत को, सब कुछ को बस बदल के रख दिया था.
The friendship and the company of non-Muslims totally changed his mindset and his Islamic modesty.
एक दिन सोया हुआ था तो बहन कमरे में गई. छोटी सी बहन थी, बड़ा प्यार करती थी अपने भाई से, कि चलो मैं भाई को देखूं और भाई को पूछूंगा, भाई तुम्हें क्या हो गया है? मैं कमरे में गई तो भाई सोए हुए थे, मगर उसका वो जो क्रॉस था वो बाहर लटक रहा था. और मैं देख कर मेरी चीख निकल गई कि भाई ये क्या हो गया, तुम मुसलमान नहीं हो?
वन ऑफ हिज यंग सिस्टर हु लव्ड हिम डियरली, शी वेंट इन द मॉर्निंग टू हिज रूम एंड ही वाज स्टिल स्लीपिंग, एंड शी सो समथिंग वेरी स्ट्रेंज दैट हिज क्रॉस वॉज शोइंग. And she saw the cross and she screamed and she said, "Oh my brother, are you not Muslim?"
वो चीखी चिल्लाई, भाई ने उसका मुंह बंद कर दिया, कहा खबरदार कुछ बोली तो.
She started screaming and he closed her mouth with hand and shouted and said,
वो सहम गई.
Don't tell anyone. So she got scared.
माँ भी समझ गई थी कि कुछ हो गया है.
Mother also understood that something has happened.
माँ तो माँ होती है ना. माँ माँ तो माँ थी. माँ समझ गई थी. और माँ ने भी फिर अजम क्या हुआ था कि बेटा तो वापस लूंगी.
द मदर इज मदर, ऑल्दो द मदर अंडरस्टूड, बट शी मेड फर्म इंटेंशन दैट आई विल टेक माई सन बैक.
माँ बाहर कमरे से बाहर आए, कहा बेटा जरा चल तो काम है, मुझे कहीं ले जा. बेटे ने छलांग मारी बेड से और फौरन दौड़ा गाड़ी की चाबी लेके, चलो माँ को कहीं जाना है, मैं लेके चला जाता हूँ.
मदर सेड टू हिम दैट, ओ माय सन, आई नीड टू गो समवेयर, प्लीज टेक मी. ही क्विकली वेंट एंड स्टार्टेड द कार थिंकिंग दैट आई विल टेक माय मदर विद समवेयर.
वो गया, दरवाजा खोला, माँ को सीट पर बिठाया, फिर आकर सीट पर बैठा और गाड़ी चलानी आगे शुरू की. थोड़ी देर के वो माँ को पूछता है, माँ कहाँ जाना है? माँ ने कहा, बेटा मुझे मस्जिदुल हराम ले जा.
And when they sat in the car, he asked the mother, "Where should I take you?" She said, "Please take me to Masjidul Haram."
उसको झटका लगा. वो माँ पहले क्यों नहीं बताया?
He was shocked and he said, "Oh my mother, why did you not tell me before?"
बेटा ले जा, तेरी मेहरबानी होगी.
She said, "Please take me."
So ठीक है चलो. फिर वो उसने आगे जाकर Masjidul Haram से थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी कर दी. कमा जा.
And he took her, but distance, he stopped the car and he said, "Mother, please go."
माँ ने कहा, बेटा तू भी आ जा.
She said, "Oh my son, please come with me."
कहा, माँ जाना, मैं भी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, अब आ जाओ, मैं इंतजार करता हूँ.
He said, "Oh mother, please go. I'll sit in the car and wait for you."
माँ रोती हुई गाड़ी से उतरी.
She jumped out of the car while crying.
और मस्जिदुल हराम की तरफ चल पड़ी.
Started walking towards Masjidul Haram.
लड़के ने सीट पीछे की, हेडफोन लगाया, गाना लगाया, म्यूजिक सुनने लग गया.
And he put his seat back and he put headphone and he started listening music.
अभी वो म्यूजिक सुन ही रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज उसके कानों में आई.
While he was listening music, slowly a voice came into his ears.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
This was the voice of Azan.
बहुत देर के बाद, कई सालों के बाद उसके कान में अजान की आवाज गई थी.
After long time, he heard the sound of Azan.
जैसे ही अजान की आवाज से कानों में गई, उसने हेडफोन बाहर निकाला.
As he heard the Azan, he removed the headphone.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. अजान की जैसे आवाज आती गई, उसने अपनी सीट सीधी की.
He started making his seat upright as he was listening.
रोना शुरू कर दिया.
Started crying.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. इसके अंदर में एक तूफान आ गया.
He felt a revolution within himself.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह.
He has this sentence again. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह.
अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.
अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. Another sentence of azan.
प्यारे महबूब करीम की याद आ गई. मैं तो खातम नबीन का उम्मती हूँ.
He started remembering beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam.
मैं तो रहमतुल आलमीन का गुलाम हूँ.
And his heart was saying that you are the ummati and the slave of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam.
अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. इसके बाद आवाज आई, हय्या अलस्सलाह.
And then the sound came, हय्या अलस्सलाह.
दरवाजा खोला.
He opened the door of his car.
हय्या अलस्सलाह.
While hearing हय्या अलस्सलाह,
बाहर निकल के खड़ा हो गया.
He came out and he stood.
हय्या अलफलाह.
He heard हय्या अलफलाह.
मस्जिदुल हराम की तरफ चल पड़ा.
He started walking towards
हय्या अलफलाह.
He heard हय्या अलफलाह second time.
मस्जिदुल हराम की तरफ चल पड़ा.
Started walking towards Masjid al-Haram.
अजान पूरी हो गई. वह Masjid al-Haram के दरवाजे पर पहुंच चुका था.
Azan was completed and he was at the door of Masjid al-Haram.
डरता हुआ Masjid al-Haram में दाखिल हुआ.
Entered Masjid al-Haram while fearing.
कलमा पढ़ चुका था.
He recited Shahada again.
अपने बातिल मजहब से तौबा कर चुका था.
He repented from the false religion.
दोबारा से मुसलमान हो चुका था.
He became Muslim again.
काबे के सामने जाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया.
He went in front of Kaabatullah Sharif and started weeping.
Toba kar raha hai.
He is repenting.
Apne Rab se maafi mang raha hai.
He is seeking forgiveness from his
Kaabe ko dekh raha hai.
Looking at the Kaabatullah.
Allah, main to kya ho gaya?
Oh Allah, what has happened to me?
Main kahan tak kahan chala gaya?
Where I have gone to?
Tere dar se bahut dur ho gaya.
I went far away from your door, oh Allah.
अल्लाह मुझे माफ कर दे.
अल्लाह फगिव मी.
मैं भटक गया.
आई वॉज डिविएटेड.
जमजम पीने वाला शराब पीने लग गया था.
आई यूज टू ड्रिंक जमजम बट देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग लिकर.
अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाने वाला मुशरिक हो चुका था.
आई बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड देन आई बिकेम मुशरिक.
जिसके पाव काबे की तरफ जाते थे, उसके पाव अब गैर मुस्लिमों के इबादत गाहों में जाने लग गए थे.
His feet used to move towards Kaabatullah. His feet started moving towards the temple.
जो अपनी माँ को देकर आंखें ठंडी करता था, वो अजनबी गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ अपनी आंखें ठंडी करने लगा.
Who used to cool his eyes by looking at his mother, he was cooling his eyes by looking at strange women.
मौला मुझे माफ कर दे.
Oh Allah, forgive me.
उसे खूब रो रो कर अल्लाह के हुजूर तौबा की.
He repented in the court of Allah Azza wa Jal while weeping.
बाहर आया.
He came out of the masjid.
जब गाड़ी तक पहुंचा तो माँ पहले से खड़ी थी.
And when he reached the car, the mother was standing there.
माँ को देखते कदमों में गिर गया.
As he saw his mother, he fell down at the feet of his mother.
माँ माफ माफ कर दे.
Oh mother, please forgive me.
माँ ने बेटे को दो बाजुओं से उठाया.
The mother lifted him up with
सीने से लगाया
and hugged him.
पकड़कर गाड़ी के दरवाजे तक लाई. अब माँ ने बेटे को गाड़ी में बिठाया.
And she supported him to come to the car and made him sit in the car.
माँ खुद आकर गाड़ी में बैठी.
Then mother came and sat in the car.
गाड़ी चल रही थी, बेटा रो रहा था.
The car was moving and the son was crying.
बेटे ने कहा माँ मुझे माफ कर दे.
The son said to the mother, "Oh mother, please forgive me."
माँ ने कहा बेटा पता है मैं आज हरम पाक में क्या करने आई थी.
The mother said, "Oh son, do you know why did I come to Haram Sharif today?"
मैं काबे को देखकर अपने रब से दुआ करने आई थी, मौला आज मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दे.
I came to Kaabatullah to look at Kaaba and I made dua that, "Oh Allah, return my son back to me."
मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली.
My Lord accepted my prayer.
और मुझे मेरा बेटा लौटा दिया.
And he returned my son back to me.
बेटा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिससे मेरी दुआ कबूल कर ली.
Oh my son, I thank Allah Subhanahu wa Taala who accepted my supplication.
माँ माँ होती है.
Mother is a mother.
माँ माँ होती है. दुनिया को परवाह हो या ना हो माँ परवाह करती है.
Whether the world care about you or does not care about you, but your mother will care about you.
माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत, माँ की फिक्र, माँ की दुआएं ये औलाद के साथ चलती हैं.
The care, the worry, the dua of the mother always go around with the children.
प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ.
What is love and what is the love of mother? Somebody must ask those children who have lost their mother.
माँ अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती है.
Mother loves her children too much.
बड़ी मुशक्कतों के बाद ही अपनी औलाद को पाती है.
She receives children after lot of difficulties.
मर्द के लिए एक लज्जत है.
For man it's just a pleasure.
औरत के लिए दर्द है.
For woman it's a pain.
3 साल की कैद मुशक्कत है 9 माह पेट में रखना.
9 months in the stomach.
तकरीबन 2 साल तक दूध पिलाना.
Almost 2 years feeding the child.
मर्द अगर एक चूहा भी पेट से निकाले तो उसको दर्द का पता चलेगा, दर्द कैसे कहते हैं.
If a man takes out a rat, just the size of a rat, something from his stomach, he would know how painful it is.
तो माँ बड़ी मुशक्कत के साथ अपनी औलाद को पैदा करती है.
And mother gives birth to a child with lot pain and difficulty.
मौत जिंदगी के उस मरहले से गुजरती है कि जचगी की हालत में अगर किसी औरत को मौत आ जाए तो उसको शहादत का रुतबा दिया जाता है.
She passes between life and death when she is giving birth to child. That's the reason that if she dies while giving birth to the child, she is regarded as a martyr.
जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला माँ के सीने में दूध की सूरत में उसको रिस्क अता फरमाता है. बाप खुश होता है.
The father gets happy.
मुझे इनाम मिला.
That I received a gift.
माँ फका रही हो, बच्चा उधर से आवाजें देता है तो माँ भाग कर उसको अपना दूध पिलाती है.
And if mother is cooking in the kitchen and the child cries, she leaves everything, she runs and she feeds the child.
गहरी नींद, माँ सो रही होती है, बच्चा रोता है, माँ उठकर उसको दूध पिलाती है.
Mother is sleeping in deep sleep and the child cries, she wakes up and she feeds the child.
बड़ी मोहब्बत से प्यार से माँ ने पाला, बाप ने पाला, बड़ा कर दिया.
The parents brought the child up with so much of love and now he became an adult and he became a man.
जब पहली बार बेटे ने कहा माँ, माँ कितनी खुश हुई थी.
Imagine when first time the child said to the mother, "Oh ma," how happy she was at that time to hear from the child that he is calling me ma.
तो पहली दफा बेटे ने कहा अबू, पापा, पापा, बाप कितना खुश हो रहा था.
And how happy the father was when the first time child said, "Dad, or father, or papa."
दोनों कहते थे बेटा once again, please. बेटा once again, please.
Both the parents would say to the child, "Please say again."
आपको याद है कभी हम छोटे थे, माँ ने खाना बनाया था, हमने कहा था नहीं खाना. तो माँ ने कहा तो बेटा क्या खाना है. कहा मुझे वो खाना है. माँ दोबारा उठी और उसने वो पका कर हमको खिलाया था.
Remember when you were small and mother made something for you and you said, you said
I would not eat this. And the mother asked, oh child, what you want to eat? And when you said, I want to eat that, she went back to the kitchen and she prepared that dish for you that you wanted.
And sometime, वो चीज किचन में नहीं थी तो उसने चुप कर अबू को कहा था इसके कि मुन्ने को वो खाना खाना है किचन में है नहीं. बाप फौरन दौड़ा, पैसे थे नहीं, कर्जा देकर वो चीज लाया और मां ने पका कर खिलाया था.
एंड यू डू नॉट नो समटाइम्स व्हेन यू वांटेड समथिंग एंड दैट वाज नॉट इन द किचन एंड योर मदर क्वाइटली टोल्ड योर फादर दैट दिस इज व्हाट आवर चाइल्ड वांट्स. And your father went and he bought that. And even if he did not have money, he borrowed money from someone just to fulfill your need and your desire.
बहुत मेहनत की हमको बड़ा करने में हमारे माँबाप ने.
Our parents have worked very hard to bring us up.
आज कहाँ है हमारे माँबाप?
Where are our parents today?
आज जब उनको भूख लगती है तो औलाद खिलाने के लिए नहीं होती.
Today when they're hungry, the children are not there to feed them.
बीवी आ गई, बीवी ने कहा मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती. उसने माँ को छोड़ा, बीवी को लेकर अलग हो गया.
The wife said that I can't stay with your mother. He left the mother and went and stayed elsewhere.
बाप आकर बेटे को कहता है बेटा डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी बढ़ रही है, दवाई लेनी है, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, पैसे नहीं है, मेरी दवाई का कुछ इंतजाम कर. बेटा कहता है कैसे करूं, कहां से करूं, आई डोंट हैव मनी, मैं बच्चे पालू या आपकी दवाई का करूं. तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा था यार.
When when the father is sick and he doesn't earn anymore, he is old, he does not have job, he needs to go to doctor, he needs money, he comes and tells the son, please give me money, I need to see doctor. And the son gets angry and he says, where must I get money? I need to look after my family and my children. And when you were small and you needed something, your father didn't tell you that. He just went and he spent on you. But today you're giving excuses not to help him at that time when he is in need.
कितने माँबाप ऐसे हैं जो आज बेटे को देखने के लिए तरस रहे हैं?
How many parents are there who are dying to see their sons?
वो पहला जुमला अब्बू पापा मामा मदर अम्मी वो सुनकर जो माँ बाप खुश हुए थे आज तरस रहे हैं कि काश दोबारा आकर वही आवाज हमारे कान सुन लें.
When they first time heard from you, when you said mummy or papa, these old parents are waiting and desiring the same that you come back and you call them.
Fathers are waiting. Where is our son? Where is our children? फिर कहां चले गए ये आज बूढ़े माँ बाप कहां हैं? ओल्ड हाउस. जब बच्चा बीमार होता है डॉक्टर कहते हैं कि बहुत मोहलिक बीमारी है, ज्यादा पैसे लगेंगे. बाप कर्जा लेकर भी बेटे का इलाज करा. एक बाप मुझे बता दो, एक बाप जिसने बीमार बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया हो पैसे ना होने की वजह से. एक बाप बता दे, अपना अपना आप बेचकर भी बेटे के इलाज के लिए पैसे लाता है बाप. भीख मांगकर कर्जा मांगकर भी बच्चे के इलाज के लिए पैसे लाता है बाप और कहता है मेरा बेटा बीमार है, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं खुद को बेचकर भी तुमको पैसे दे दूंगा, मगर खुदारा मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा बेटा बीमार है. कितने बाप हैं जिन्होंने बीमार बेटों को छोड़ दिया और आज कितने बच्चे हैं जिनके बीमार बाप ऐसे ही पड़े हुए
हैं. When the child is sick and the doctor says that on operation, on treatment, a lot of money is required. And the father will make sure, even if he has to borrow money, even if he has to sell himself, he would make sure that the money is there and the child is treated. Show me any father in the world that the child is ill and he left him suffering because there is no money. He might not get money. He will be trying still, running around here and there, asking people, please help. But let me show you that there are lot of parents who are suffering with lot of pain and their sons do not spend a penny on them.
हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, इन डॉक्टर से पूछें अस्पताल में कितने माँ बाप इस वजह से दम तोड़ जाते हैं कि इनके इलाज के लिए पैसा नहीं आया था और अस्पताल में आज तक कितने बच्चों ने इस वजह से दम तोड़ा कि इनके माँ बाप ने इनके इलाज नहीं करवाया.
डॉक्टर्स आर सीटेड हियर, यू कैन आस्क देम, दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल्स, दे विल टेल यू दैट हाउ मेनी पेरेंट्स डाई बिकॉज नोबडी केम टू टेक केयर ऑफ देयर ट्रीटमेंट्स. बट द चिल्ड्रन हु आर ill and suffering, the parents would make sure that they would do something for their children.
History waze aulaad chhodti hai maa baap ko, maa baap kabhi aulaad ko nahi chhodte.
This is the history, and it's a very clear history that the children leave their parents but the parents would not leave their children.
Maa baap apne khwahishat ko qatl karte hain, khwahishat ko maarte hain, magar aulaad maa baap ke liye apni khwahishat ko qurban nahi karti.
It's parents who destroy their desires for the sake of their children, but children do not destroy their desires for the sake of their parents.
Maa baap ne apne pet ko kaat kar aulaad ko pala hoga, aulaad apna pet kaat kar maa baap ko nahi sambhalti.
The parents went through starving in order to look after children, but children do not go through starving in order to look after their parents.
Do maa baap milkar 11 bacche paal lete hain, 11 bacche milkar do maa baap nahi sambhal sakte.
Two parents, I mean mother and father, two people, they can look after up to 11 children, but 11 children cannot look after two parents.
Ek beta apne baap ko old house mein le gaya.
A son took his father to an old age home.
Aur walid ko kaha ki aap zara chair pe baithe, main aa raha hu.
And he said to the father, please sit on the chair and come back.
Admin office mein gaya.
He went to the admin office.
और अंदर जाकर सारा नाम और लिखाया.
एंड ही फिल ऑल द नेसेसरी फॉर्म्स इन द एडमिन ऑफिस.
और बाहर निकल कर अबू बैठे में आ रहा हूँ.
एंड ही केम आउट एंड ही सेड टू द फादर अगेन, ओ फादर सिट, आई एम कमिंग बैक.
थोड़ी देर तक वो आया नहीं.
ही डिड नॉट कम इन अ व्हाइल.
एडमिन बाहर आया.
द एडमिन स्टाफ केम आउट.
और उनको कहने लगा कि आपका पड़ोसी कितना अच्छा आदमी है कि आपको यहाँ तक लेकर आ गया.
And he said, how good is your neighbor that he has brought right up to here.
Bude aadmi ne kaha, he is not my neighbor, he is my son.
The old man said that he is not my neighbor, he is actually my son.
Bola usse andar aakar to ye likhwaya tha ki main iska padosi hu ya akela hai, iska beta beta koi hai hi nahi, liyaza usko old house mein dakhil karane aao, isko rakh lo, main ja raha hu.
He said this is what he filled in the forms, that I am his neighbor and this old man does not have any son and he is alone suffering in this age. I just brought him to admit in this old age home.
Yeh haal hai.
And this is the condition.
Aulaad ko kya ho gaya, kuch samajh nahi aa rahi hai.
What is happening to the children, we can't understand today.
Acha, jo aulaad maa baap ka khayal rakhti hai na, wo bhi wo nahi kar sakti jo maa baap ne kiya hai.
Even children who look after their parents, they cannot give that kind of service to the parents. The service the parents has given to the children.
Ek bete ne apne baap ko kaha, baap jo bolo main aapke liye karne ke liye taiyar hu. Bahut obedient tha.
A son who was very obedient, he said to his father, oh father, I will do anything that you desire.
Hamesha kehta, abbu bas aap hukm karo, main ab jo karoge main kahunga.
He would always say, oh father, just order me and I'll do anything for you.
Ek din abba ne iska imtihan liya.
And one day father tested him.
Kaha, beta kinu khane ka dil ho raha hai.
He said, oh son, I want to eat orange.
Beta tokri uthakar basket uthakar puri kinu ke liye aaya.
And the son brought a basket of oranges.
Wo kaha ki abba chalo aapko orange khana tha na, ye lo orange.
He said, father, you wanted to eat oranges, there it is.
Abba ne kaha, beta ek kaam karte, wo ghar ke samne jo unchi pahadi hai na thodi si, hain us par baith kar khate.
The father said to the son, oh son, that little hill at a little distance, let's go there and we sit there and eat.
Bete ne basket li aur walid sahab ko liya aur mohabbat se little hill pe jaakar baith gaya.
So the son carried the basket and took the father with, so they're going to have picnic at that little hill.
Ka beta ki orange do.
And he said, oh son, give me the orange.
Bete ne orange diya.
The son gave him an orange.
Baap ne orange niche fek diya.
The father threw the orange on the ground.
Beta utha ke le aao.
And he said, son, go pick it up.
Beta bhaga utha ke le aao orange.
And he ran and he brought the orange back and he said, "Oh father, there it is."
Baap ne kaha, "Thank you."
The father said, "Thank you."
Dubara orange niche phek diya.
He threw the orange again on the floor.
Cha beta utha ke leya.
And he said, "Oh son, go bring it."
Beta muskura kar gaya, utha ke le aaya. Saansi phuli hui thi. Ab wo orange.
The son ran again and he picked up that orange and there was still smile on his face and he said, "Oh dad, there it is."
Baap ne kaha, "Jazakallah."
The father gave him dua.
Baap ne dobara orange niche phek diya.
Then third time the father threw the orange.
Cha beta le aao.
And he said to the son, "Oh son, go bring it."
Bete ka mood kharab ho gaya.
And son's mood went off.
Gusse mein niche utra.
He went down but angry.
Orange utha kar upar aaya.
Picked up the orange, came back.
Mood kharab tha.
The mood was still
chehre pe gussa ka aasar nazar aa rahe the.
There were signs of anger on his face.
Baap ko orange deta hai.
Gives the orange to the father.
Lo kha lo.
Says, "Please eat."
Baap ne phir niche fek diya.
The fourth time father threw that orange.
Beta le aao.
He said, "Oh son, go bring it."
Wo bete ne kaha, "Abba, kya mazak hai?"
The son said, "Oh father,
main baar baar orange utha ke la raha hu, baar baar aap niche fek rahe ho, thak jata hu main."
He said, "What is this joke, oh father? You're throwing this over and over and then you tell me go bring it. I get tired."
Baap ne kaha, "Beta, thak gaya?"
The father said to him, "Oh son, are you tired?
Gussa aa gaya?
You got angry?"
Jab tu chhota tha na, main yahi tujhe lekar aaya tha ek din.
When you were small, I brought you here.
Aur tere haath mein chhoti tennis ki ball thi.
And you had a small tennis ball in your hand.
Tune 10 dafa niche fekha tha beta, 10 dafa utha ke laya tha aur 10 dafa tujhe pyar karta raha main.
You threw it 10 times and I ran every time, I picked up, I brought it back and I was smiling all the time.
Beta kuch bhi kar le, baap nahi ban sakta.
Son can do anything what he wants but he can never become father.
Baap baap hota hai, maa maa hoti hai.
Mother is mother and father is father.
Apne maa baap ki qadar kare.
Please value your parents.
Apne maa baap se mohabbat kare.
Please love your parents.
Apne maa baap ka khayal rakhein.
Look after your parents.
Apne maa baap ko takleef bhi na dein.
Please do not harm your parents.
Yahi aapke jannat hai, yahi aapke dozakh hai.
They are your hell and they are your paradise.
Aur maa baap se pyar karna seekhein.
And please learn how to love your parents.
Kyunki jo maa baap ko satata hai usko Allah Taala duniya mein bhi sakht saza deta hai.
The one who causes pain to parents, Allah subhanahu wa ta'ala punishes that person even in dunya as well.
Sarkare Madina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne irshad farmaya.
Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has stated,
maa baap teri dozakh hain aur jannat hain.
Your parents are your hell and your parents are your paradise.
Aur ek aur maqam par irshad farmaya, سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے.
And in another narration it is mentioned that if Allah subhanahu wa ta'ala wills, he would lift the punishment of all sins for the hereafter. But the person who is disobedient to parents, he would be punished in this very دنیا as well.
ماں باپ سے پیار کرنا سیکھیں, ماں باپ کا ادب کرنا سیکھیں, ماں باپ کا احترام کرنا سیکھیں.
Please learn how to love and how to respect parents.
کم از کم روزانہ ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کی عادت بنائیے.
At least form a habit to kiss their hands and feet once a day.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
Beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم has said,
یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے.
Paradise lays under the feet of mothers.
حدیث پاک میں ہے,
it's mentioned in حدیث مبارکہ,
جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما, ماں کا, جس نے اپنی ماں کا پاؤں چوما, ایسا ہے جیسے اسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا.
The one who kissed the foot of his mother as if he has kissed the doorstep of jannat.
اب یہاں تو باہر بہت مشکل ہے کلچر, مطلب ماں باپ کی عزت نہیں ہے ہمارے یہاں, اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے اندر, اسپیشلی ہاں پاکستان میں, इंडिया हिंद में और बांग्लादेश में भी, मतलब इस तरह की बास कंट्रीज है जिनमें अभी माँ बाप की कुछ कल्चर वाइज और फैमिली वाइज कुछ ना कुछ वहां पर एक रिस्पेक्ट का माहौल है। वालिद आता है, हमारे यहाँ है, बाप आता है तो बेटे खड़े हो जाते हैं, माँ आती है तो बेटे एहतराम करते हैं, मगर स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा है नहीं। माँ बाप घर में लाइक एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वालिदैन पेरेंट्स नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, देर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन।
इन सम मुस्लिम ईस्टर्न कंट्रीज स्टिल देयर इज कल्चर टू सम एक्सटेंट टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पेरेंट्स, बट इन वेस्टर्न कल्चर्स पेरेंट्स आर ट्रीटेड ऑर्डिनरी, नथिंग एनीथिंग स्पेशल, सो इट्स वेरी अलार्मिंग।
ऐसा नहीं करें आप,
प्लीज डू नॉट डू दैट।
जिस माहौल में रहते हैं, मैं क्या अर्ज करूं, पहला वाक्या मैंने बयान किया कि गैर मुस्लिमों का माहौल क्या से क्या कर देता है, ईमान तक ले लेता है।
यू आर लिविंग इन दिस एनवायरमेंट, व्हाट मस्ट आई टेल यू, आई टोल्ड यू द स्टोरी दैट द कंपनी द एनवायरमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स समटाइम इवन टेक्स द ईमान अवे।
सिर्फ आशिकान रसूल की सोबत में रहे,
प्लीज रिमेन एंड स्टे इन द कंपनी ऑफ लवर्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपका अकीदा, आपका नजरिया, आपका दीन, आपका ईमान और इंशाल्लाह आपका अमल भी महफूज रहेगा।
इंशाल्लाह योर ईमान, योर व्यूज, योर आइडियोलॉजी, योर बिलीफ्स एंड योर एक्शंस वुड बी प्रोटेक्टेड।
सिर्फ आशिकाने रसूल की सोबत पर है, बस ये ज़हन बना लें।
स्टे ओनली इन द सोहबत एंड द कंपनी ऑफ ट्रू लवर्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप देखिए नेक है, नमाजी है,
यू मस्ट सी दैट पर्सन इज पायस, ही इज पंक्चुअल विद नमाज,
सुन्नतों पर अमल करता है,
ही प्रैक्टिसेस अपॉन द सुन्ना ऑफ द बिलवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सरकार की बारहवीं मनाता है,
ही सेलिब्रेट्स द 12th ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीन ही सेलिब्रेट्स मिलादुन नबी,
गौस पाक की 11वीं मनाता है,
ही ऑब्जर्व्स द 11वीं शरीफ ऑफ हुजूर गौस पाक,
ख्वाजा की छठी मनाता है,
ही ऑब्जर्व्स द फातिहा ऑफ द छठी शरीफ ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी,
आला हज़रत अहमद रजा खान की 25वीं मनाता है,
एंड ही सेलिब्रेट्स द 25th ऑफ सैयदी आला हजरत,
इसकी सोबत में रहे,
दैट्स द पर्सन दैट यू शुड बी इन हिज कंपनी,
बाकी छोड़ दें
एंड लीव एवरीबॉडी एल्स।
घर में भी यही माहौल बनाए,
and make this environment in your home as well.
अगर आप ऐसा माहौल बनाएंगे, आज कल आपकी औलाद भी उसी माहौल में पलेगी बढ़ेगी।
And if you create that environment in your home, then your children will grow up in that environment.
मैं आपको एक अर्ज करता हूँ,
I want to say something to you.
मैंने औलाद के हवाले से बहुत कुछ बयान कर दिया,
I have mentioned many things about children.
ऐसी औलाद बनी कैसे?
How these children who are disobedient to parents, how did they become like that?
कैसे बनी? क्या आपने बनाया? आप कहेंगे नो। कौन बनाता है? कौन कहता है कि मेरी नाफरमानी करना?
Did you mold them in this way? No, you did not do that. Which parent want that their children to be disobedient?
तो कैसे हो गई?
So how they have become disobedient?
कुछ तो सोचिए।
Please think, ponder upon it.
कैसे ये फल कड़वा मिला आपको?
How come you got this bitter fruit with you?
कहां से इसकी जड़ में कड़वाहट डाली गई है?
Where there is bitterness in the root of this bitter fruit?
वो कहां जाता था?
Where he used to go?
कहां उठता था?
With whom he used
कहां
to
बैठता था?
Where he used to sit? Who were his friends?
कहां पढ़ता था?
Where he used to go and study?
कौन था इसका उस्ताद?
Who was his teacher?
इन सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं था।
Did you ever think about these things while you was growing up?
दरख्त बढ़ता चला गया।
The tree started growing and growing.
आपने सोचा था इसके साये में बैठकर मैं ठंडी हवाएं लूंगा।
You thought I will sit under the shade of this tree one day and enjoy the cool breeze.
बुरे माहौल इसके पत्ते तो वैसे ही ले गए कि साया देता।
The bad environment took the leaves of this tree and it has got no leaves anymore.
गफलत भरी तरबियत ने इसके फल भी कड़वा दिया आपको।
And the training that he got, which was based on carelessness, the fruit is very bitter.
वो कहते हैं ना, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है.
As it said in the couplet, I would tell you in a nutshell that, you know, all these things, the bad reaction from children that we are seeing, we have planted that seed. We have brought them up in that way. We did not bring them up in proper Islamic environment and tarbiyat. So today, the fruit is very bitter.
मैं आपको बहुत ज्यादा इस मौजू पर नहीं लेके जाऊंगा, बस जस्ट एक आपके सामने एक मैंने मैरर रखा है, आप देख लें. अगर आपको लगता है कि ये हमें ही दिखा रहा है तो आप अपने आप को दुरुस्त करें. दुनिया भर के हर मुसलमान अपने अंदाज को दुरुस्त करे. अपने बच्चे की तरबियत, बच्चे को बचाना है तो बचपन से बचाना पड़ेगा. बच्चे को बड़े होकर बचाने के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए. बच्चा जब तक उंगली पकड़ के चल रहा है ना, इसको जन्नत के रास्ते पे लेके चलो. जिस दिन उसने उंगली छोड़ी ना, फिर इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा.
I've shown you the mirror. If the head fits you, wear the head. If you want to save your children, save them while they are children. And if you want to save them when they become adults, then forget about it.
ये ना कहें कि मेरा बेटा अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है. बच्चा ही बचेगा. अगर बच्चे ने बचपन में बचा नहीं तो फिर बच्चा बड़ा होकर बचेगा नहीं. मुश्किल हो जाएगा.
Don't keep on saying, you know, leave him. You know, he's a child. Leave him. Let him enjoy. He's a child, and this is the age to save him. If you did not save him, then there is no age to save him again.
इसके लिए आपको अपने घर के माहौल को बदलना पड़ेगा.
For that, you need to change the environment of your home.
बच्चा Children like a blank board. Children likes a black board, plain board, clear board. जो लिखा जाएगा वो उसके अंदर पेस्ट हो जाएगा.
Children are like clean writing board or clean slate. So whatever would be written on it, that would stay there.
वो अगर अपने माँ बाप को देखेगा कि हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप का क्या ख्याल रखा था.
And if they see their parents, that their parents did not look after their parents, means their grandparents.
एक आदमी कहता है कि मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था.
A person says that I was standing and waiting for a bus.
ऊपर से दो ऊन के दो गोले गिरे.
Two bundles of wool fell from top.
उससे उठाया का चलो जाकर मैं उठते देखा ऊपर तो दो बूढ़े बिल्कुल बूढ़े जूड़ियां लगी हुई मर्द और औरत नजर आए मुस्कुरा रहे थे. उसने कहा चलो जाकर मैं इनको बूढ़ों को देकर आ जाता हूँ.
He saw two very elderly people, man and woman. He saw them sitting there and he thought it fell from them and he decided let me go. Take those two rolls of wools and give it back to them.
वो ऊपर गया, कमरा नॉक किया, दरवाजा खुला. वो जैसे ही अंदर उसको वो बंडल देने गया तो देखा तो टेबल पी थी, चाय भी थी, बिस्किट भी रखे हुए थे. कहा आओ बैठो, चाय पी लो.
As he went and knocked at the door, they opened and he saw inside there was a table. They sitting there. There was some biscuit, some tea. And when they saw this person, and they said, "Please come in."
वो थोड़ी देर बैठा चाय वगैरह पी बिस्किट वगैरह खाए और बाहर निकल के जाने लगा.
He sat a little while after having tea, biscuits, and then now he's going.
एक बंदा उसको मिला कहा कि कौन है ये लोग. तो उससे कहा कि ये दो बूढ़े हैं, मियाँ बीवी हैं, और ये ओल्ड हाउस है, और यहाँ ये रोजाना गैलरी में निकलते हैं, ऊपर से ये दो बंडल फेंकते हैं, कोई इनको देने के लिए आता है, उसको चाय बिस्किट पिलाते हैं और ये आधा एक घंटा अपना टाइम पास करते हैं.
So somebody asked him, who are these people? He said, these are two old people. They live in this old age home, and this is what they do every day. They throw those two bundles of wool. So somebody picks them up and goes to them,
and then they just call him in and offer him tea. So this way they find some company and they find somebody to talk to.
कहा ये इनके बच्चे नहीं हैं?
Said, don't they have children?
कहा बच्चे हैं, जवान हैं, खाते पीते कमाते हैं और rich person हैं.
Said, yes, they do have children. They are adults. They are well to do.
उसको बड़ी तशवीश भी कहा कि मैं इसके बच्चों से मिलूं, इनको बताऊं कि इनके माँबाप का हाल क्या है.
He started wondering and he said, let me go and see the children and tell them what's the condition of their parents.
Usne address liya aur office gaya, jaakar iske bacche se mile. Well office thi, businessman tha, well furnished office ke andar gaya, knock kiya, usne andar bulaya, bithaya aur kaha, ji kaise aaye aap.
He took the address, he went to the office of their son and it was a big office, well to do person, and he went to meet him and the son asked this person, what's your reason to come?
Isne kaha ki main aapke maa baap se milkar aaya hu.
He said, I've met your parents.
Aapke maa baap old house mein hain.
Your parents are living in old age home.
Aap itne khate peete paise wale hain, aap apne maa baap ko old house mein kyu rakhte hain? Inko lekar aaiye, inki khidmat kijiye, ye koi tareeka to nahi hai na. Ab usne thoda apna emotional uske andaaz se wo samjhane lag gaya.
He started addressing him, talking to him that you are well to do, you are affluent, why don't you look after your parents, how can you leave them all alone in the old age home.
Usne bete ne parwahi nahi ki, kaha emotion hone ki zarurat nahi hai.
He very carelessly said, he said, you don't need to be emotional.
Aapko pata hai kuch nahi hai, khali khali kyun aap matlab humse behas kar rahe hain aap.
You don't know anything, so you are a stranger outsider, so don't come and debate with me.
Bahut simple si story hai. जब हम छोटे थे हमें माँ बाप की जरूरत थी, माँ बाप ने हमारे यहाँ मर्द और रख दिए थे, वो
मेड
मेड तो वो रख दिए, वो हमको पालते थे, पोसते थे, बड़े करते थे. हमें माँ बाप की जरूरत थी, माँ बाप उनको पैसे दे देते थे, तो बस हम इसी तरह बड़े हो गए. तो जब हमें माँ बाप की जरूरत थी, माँ बाप ने हमको पैसे दे दिए. आज माँ बाप को हमारी जरूरत है, हमने माँ बाप को पैसे दे दिए.
स्टोरी इज वेरी सिंपल. व्हेन वी वर स्मॉल आवर पेरेंट्स लेट the maids look after us. They were too busy, they spent no time with us. We grew up with servants and they used to pay money for our needs, and that's what we saw. And today they old, we young, so we paying money for their needs. So there is no need for us to go and sit with them and spend time with them.
Ye jo समझना है ना, ये कि ये माँ बाप क्या समझते हैं, ये बाप क्या समझ रहे, पैसे देकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है. ना ना मैडमैन.
व्हाट द फादर थिंक्स बिकॉज ही इज स्पेंडिंग मनी ही हैज फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ना ना ना,
नो वे.
औलाद देखती है माँ बाप को मुशक्कत करते हुए, मेहनत करते हुए, कमाते हुए, ये एक तरफ. दूसरी तरफ तरबियत है, दूसरी तरफ तरबियत है, इस्लामी तरबियत है, माँ बाप की इज्जत है, माँ बाप का एहतराम है. उसको ऐसी जगह पढ़ाना है जहां पर माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का एहतराम, फैमिली का एहतराम, कुरान और हदीस, खुदा का खौफ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहां सब कुछ सिखाया जाए, ये तरबियत के साथ साथ इसकी निगहदाश्त, उसकी परवरिश. परवरिश अलग है, तरबियत अलग है. हम परवरिश कर रहे हैं, तरबियत नहीं कर रहे.
व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप and if the parents are with them together, children see their parents working hard for them, and that builds up respect in their hearts. And then secondly, the upbringing. Nourishing is another issue. Nourishing is that you buy food for them, or you pay for their school fees or their other needs. But upbringing is what is called tarbiyat, and that makes the very strong impact upon the character of your children. So you need to spend time with them, they must grow up with you.
Aur yahan jo main tarbiyat keh raha hu, tarbiyat se murad just Islamic tarbiyat.
And when I talk about tarbiyat, I'm referring to Islamic tarbiyat only.
Islamic manners of eating,
Islamic manners of eating,
Islamic manners of greeting, Islamic manners of sitting, Islamic manners of sleeping, Islamic manners of watching, Islamic manners of talking, Islamic man, everything due to Islamic manners. घर कैसे आना है, माँ बाप से कैसे मिलना है, फैमिली मेंबर से कैसे मिलना है, आस पास पड़ोसी लोगों से कैसे मिलना है, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है. There are teacher, there are first teacher, and house is the first institution. Education institution is our house, and parents are the first female and male teacher. Where is the teaching? Where is the teacher? Hum maa baap hain, hum guardian nahi hain. We are not a just guardian. We are parents. अपनी ownership को accept करें और properly अपनी औलाद की तरबियत करें. अगर ये कोई गलत काम करता बचपन से देखें तो आप उसकी गिरफ्त करें, आप उसको पकड़ें, उसकी इस्लाह करें ताकि आगे जाकर ये बुरी आदत इसकी पक्की आदत ना बन जाए. लेकिन हमने बचपन से ही इसको इतना रिलीज कर दिया क्योंकि हमारे पास ही टाइम नहीं है. हम खुद अपनी प्राइवेसी, अपनी प्राइवेट लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, हम खुद कमाने के पीछे भाग रहे हैं. अरे किसके लिए कमा रहे हो? जिसके लिए कमा रहे हो, जब वही तुम्हारा नहीं रहेगा तो क्या दौलत को क्या खाओगे? क्या करोगे? पैसा खाओगे?
सो यू नीड टू टेक द ओनरशिप ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नॉट जस्ट गार्डियन, यू आर पेरेंट्स. So you need to spend with them. You're more worried about your own private life and private pleasures and your own interests, and you neglect the interests of your children. If you find your child doing something wrong, it is your responsibility to reform him and to discipline him and to make sure that he does not do wrong again. But we are too busy making money, you know, building up wealth. What are you going to do with that kind of wealth when your children are not yours?
सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट टीच थ्री थिंग्स टू योर चिल्ड्रन.
कुरान की तिलावत,
द रिसाइटेशन ऑफ कुरान करीम,
रसूलुल्लाह की मोहब्बत,
द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम और उसके अहले बैत की मोहब्बत,
एंड द लव ऑफ अहले बैत.
ये सिर्फ हदीस नहीं सुनानी है, ये सिखाना है. ये सुनाने में और सिखाने में फर्क है.
You don't need to tell this hadith to your children only. Rather, you need to teach them what is mentioned in the hadith.
आपने कभी किसी खाली डब्बे में मिट्टी डाली है?
Did you ever put sand in empty box or tin?
डाली. तसव्वुर करें.
Imagine that you did that.
आप ऐसे डाल दें, उल्टा करेंगे तो निकल जाएगी.
And if you just fill sand in an open tin. And when you turn it upside down, the sand will come out.
Right? अब इसको अगर मिट्टी को डालकर आप इसको properly pressure के साथ अंदर में दबाएंगे, 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 full दबा दें, pressure के साथ दबा दें, continue दबा दें, अब उल्टा करेंगे तो निकलेगी.
And if you fill the sand in the tin, but keep on pressing with pressure. keep on pressing, it will become dense, solid inside. So if now you turn the tin, the sand will not come out.
इसी तरह बच्चे की तरबियत करनी है.
So this is how you need to train your children.
अगर माशाल्लाह उसको उल्टा भी करे ना तब इसकी तरबियत निकल ना जाए, अंदर ही रहे.
So even if the society wants to turn him down, so the tarbiyat must not come out. It must still be there.
और हमें लोग कहते हैं फैमिली को टाइम बहुत देना होता है हमको.
People say to us that you know when they can't do madani work, for example.
Madani काफले में चलो, madani family time. Family के साथ जो करना है ना वो आकर सीख लो, फिर जाके फैमिली को टाइम दे देना.
So what you need to do with family, come and learn that, and then go and give time to family.
अरे फैमिली को ऐसा टाइम क्या देना है कि जब आपका टाइम हो तो फैमिली आपके साथ नहीं है.
सो द टाइम यू गिव टू योर फैमिली व्हेन योर टाइम इज अप, मीन व्हेन यू आर अबाउट टू डाई, योर फैमिली इज नॉट विद यू.
क्या फैमिली को टाइम दिया?
सो व्हाट काइंड ऑफ टाइम हैव यू गिवन टू योर फैमिली?
आई एम फादर, आई एम नॉट अ एटीएम मशीन. जब बाप एटीएम मशीन बना हो जाए ना, तो जब तक पैसा देता है ना तो इसकी आवाज भी अच्छी लगती है, और जब इसे पैसा निकालना बंद हो जाए ना तो इसकी आवाज बुरी लगती है.
सो व्हेन द फादर बिकम्स एन एटीएम मशीन, द चिल्ड्रन कीप ऑन पुलिंग मनी, देन ही इज फाइन, हिज वॉइस इज आल्सो फाइन. बट द डे दैट मशीन इज नॉट वर्किंग एनीमोर, सो देयर इज नो मनी कमिंग फ्रॉम देयर,
then his voice is not even tolerated.
अपने आप को पैसा देने वाली सिर्फ मशीन ना बनाए, तरबियत देने वाला टीचर बनाए.
Don't make yourself an ATM machine to give money. Rather make yourself a teacher who gives proper training.
अपने बच्चे को नो सुनने की आदत बनाइए.
Let your child learn the habit of hearing no from you.
नहीं, no, नहीं देता, नहीं जाना, नहीं बोलना, नहीं खाना, बैठ जाओ, सो जाओ. नहीं मना किया ना, नहीं. नो मीन्स नो, नो आर्गुमेंट. बच्चे को नो सुनने की आदत बनाए, वरना शुरू से इसको यस यस बोलते रहते हैं. यस 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 माय सन, यस माय सन, यस माय सन. योर सन योर स्लेव, यू नॉट आर अ स्लेव ऑफ सन. आप बच्चे आपके गुलाम है, आप बच्चों के गुलाम नहीं है. परवरिश करने वाला गुलाम नहीं होता. आपकी शफकत को वो गुलामी समझ रहा है. आप शफकत दें, गुलामी ना करें. आपकी शफकत आपके बच्चे को आपका गुलाम बनाएगा. वरना यहां तो माँ बाप ही गुलाम है. माँ बाप बच्चा छोटा है तब भी बोलने में डर रहे हैं, बड़ा हो गया तब भी बोलने में डर रहे हैं. क्या बच्चे इसलिए पैदा हुए थे कि माँ बाप डरते रहेंगे और बच्चे डराते रहेंगे?
यू आर फादर एंड यू शो लव, एंड टू शो लव डज नॉट मीन दैट यू आर स्लेव ऑफ योर चिल्ड्रन. To show love means that you must give them proper training, and they must be in habit of hearing no. When you stop them, they must know that they have to stop. Parents are not someone that they must be fearing their children. So whenever the child is stubborn with something, they get afraid and they say no, yes, yes, okay, okay, fine, you do it. When something is wrong, the parents must put their foot down and say that it's wrong and it's no. And you can't do it.
मतलब ये लिमिटेड है. मतलब हर चीज अपने मौके पर अच्छी लगती है. जहां नो कहना है वहां नो कहें, जहां नो नहीं कहना वहां खाली खाली नो कहेंगे तो वो नो नो नहीं रहेगी.
एंड यू ऑल्सो नीड टू लर्न वे टू से नो एंड वे टू से यस, बिकॉज इफ इट्स नॉट एन ओकेजन ऑफ टू से नो एंड यू से नो, देन टू यू आर डैमेजिंग.
यू नो फादर लाइक अ डॉक्टर एंड चिल्ड्रन लाइक अ पेशेंट. एंड डॉक्टर नोज वेल. कभी मोहब्बत से इलाज किया जाता है, कभी दवाई से इलाज किया जाता है, और बच्चे को अमूमन मीठी दवाई से इलाज किया जाता है. तो ये बाप जो है ना, स्पेशली वालिद, ये लाइक अ डॉक्टर होता है. वो इस इलाज करता है अपने बच्चे का, क्योंकि बच्चा तो डिमांड करता ही रहता है ना. तो जिस तरह आपने अपने बच्चे को गर्म पतीली पकड़ने से बचाया ना कि जल ना जाए, इसी तरह बुरी सोहबत से बचाए कि बर्बाद ना हो जाए.
Father is like a doctor. Doctor knows about the patient, you know, what medicine to be given and what not, and when to change and when not to change. All these details doctors know, and they do that. This is how the parents play their role. You know, when your child wants to hold a hot pot, burning hot pot, and you stop him. Maybe child doesn't know what is the harm in it, but you stop him because you don't want your child to be harmed. So now there are a lot of things that you know are wrong, but the child doesn't know that they are wrong. He finds pleasure in it. So when you know that these are harmful things, so like you saved him from touching the burning hot pot, you need to stop him entering in those activities which would harm him.
ये चंद बातें मैंने पेरेंट्स के लिए बयान की हैं. लास्ट में मैं बच्चों के लिए, औलाद के लिए फिर कुछ मदनी फूल दे दूं कि माँ बाप कितनी ही गफलत कर लें, औलाद को ये हक हासिल ही नहीं है कि वो माँ बाप की नाफरमानी करे.
Now at the end, I would like to address the children specially that even if parents are neglectful towards their responsibilities, it does not give you right as children to disobey them or to insult them or to hurt them.
क्योंकि वो उनका उनके रब का मामला है.
That's between them and Allah Subhanahu Wa Taala.
अगर उन्होंने आपके परवरिश में रब की नाफरमानी की भी हो, तो आपको इनकी मोहब्बत में रब की नाफरमानी नहीं करनी.
And if they have disobeyed Allah Subhanahu Wa Taala in order to give you the proper Islamic training,
you should not be disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala as far as their respect and love is concerned.
Kahin likha hai,
it's mentioned somewhere,
jab maa baap ke nafarman ko dafan kiya jata hai to qabar use dabati hai yahan tak ki uski pasliyan toot kar ek dusre mein pevast ho jati hain.
When a disobedient person is buried in the grave presses him that his ribs interlock with each other.
Hadith Pak mein hai,
it's mentioned in Hadith.
Teen shakhs jannat mein nahi jayenge.
Three people will not enter paradise.
Maa baap ko satane wala.
The one who hurts his parents.
The youth.
The one who does not have Islamic modesty.
Mardani waza banane wali aurat.
A woman who wears clothes of men. Oh, she pretends to be like men.
Ye teen jannat mein na jane ki hadith pak mein sarahat aayi hai.
It's mentioned very clearly in Hadith Mubarakah that these three kind of people will not enter paradise.
Ab ye kya bachna humko hai, maa baap ki nafarmani se bachna hai.
It is our responsibility that we should refrain from disobedience of our parents.
Dayus kehte hain us mard ko ke jo apni auraton par mahram par ghairat na khaye, inhe behayai aur besharmi se na bachaye, aisa mard dayus hai aur dayus par bhi jannat haram hai.
Dayus is that man that he does not feel ashamed when his mahram women go out, intermingle with other men, or they go out with not proper veiling, and he does not feel bad about it.
देखिए, last time भी मैंने आपको इस मामले में कुछ अर्ज किया था, लेकिन ये इतना पुराना मसला है जो शायद इतनी जल्दी हल नहीं हो पाता कि औरतों को अजनबी मर्दों से दूर ही रहना चाहिए.
I mentioned this before, and it's a very difficult issue which needs to be talked and reminded over and over, that keep your women away from strange men.
Aap jab bhi kisi gair mard ke samne aana hai, aap pura apne aap ko cover kare.
And women, if they have to come in front of gair mahram men for some work or reason, they must cover themselves fully,
including your face,
including the face.
Please, my request, प्लीज समझिए, और मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को बेशर्मी और बेहयाई से बचाए, अजनबी मर्दों के साथ मिलने से बचाए. ये दुरुस्त नहीं है. ऐसा ना हो कि वो दयूस हो जाए और कहीं कयामत के रोज फंस ना जाए.
दिस इज माई रिक्वेस्ट टू द सिस्टर्स एंड ऑल्सो आई से टू द ब्रदर्स, प्लीज मेक श्योर दैट योर वाइव्स, योर सिस्टर्स, योर हाउस होल्ड वीमेन, डू नॉट लेट देम go open in front of ghair mahram men, shake hands, talking, eye contact,
shake
friendship.
Hand to sir haram hai, najayiz hai. Yes. Shake hand, what do you mean for shake
even,
hand?
Even between cousins.
What do you mean for shake hand?
Even between cousins.
Jo bhi ajnabi mard hai.
But here on the day of Eid, all cousins, they hug and they shake hand and they kiss on the forehead or cheek or something. It's a culture here in this country.
It's not culture. Sorry sir, it's a begairati.
This is immodesty. It's not a culture.
Problem ye hai ki matlab ki begairati culture ban gaya hai.
Immodesty has become culture, in other words.
Ye begairati culture ban gaya, ye hamari hum mar gaye.
Our ghairat, Islamic modesty, that a kind of jealousy that you should feel,
hug?
That's died off.
Gale milte hain, you
yes,
hug.
They hug, they shake hand, they kiss on the cheek.
Astaghfirullah.
Sometimes even on the lips.
Astaghfirullah.
Because they're far relatives, because they're cousins. Or they call it cousin brother. They call it cousin sister.
Duniya mein badkari ki jo percentage hai na, isme ek badi percentage cousins ki hai.
You know, the
आप रिसर्च कर सकते हैं, मैं रिसर्च करके बैठा हूं.
His Eminence has said that I've done research on it, that the shameless activities that take place in the world, a very big, very big percentage of that is between the cousins.
देखिए, इस्लामी बहने पर्दे में सुन रही हैं, मदनी चैनल पर भी देखा जा रहा है. मैं बहुत ज्यादा ओपनली बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन एक सेंस समझिए, एक आपको एक मैसेज दे रहा हूं. वो कशिश जो एक मर्द औरत को और औरत मर्द को देखकर अपने अंदर पाता है, वो आप किसी आम लोगों को देखकर नहीं पाते. दरद को देखकर, जानवर को देखकर आपको किसी को कशिश नहीं आती. खूबसूरत से खूबसूरत आप बाग फल फूल देखते हैं, आपको ऐसी कोई कशिश नहीं आती. लेकिन एक मर्द जब औरत को देखता है, औरत जब एक मर्द को देखती है अजनबी, तो एक कशिश आती है एक दूसरे के अंदर. आती है नहीं आती? इट्स नेचर.
देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन गैर महरम स्ट्रेंज मेन एंड वीमेन व्हेन दे लुक एट ईच अदर.
जब भाई बहन को देखेगा, माँ बेटी को देखेगा, ये चीजें नहीं आती.
When the brother looks at sister, sister looks at the brother, or son looks at the mother, mother looks at the son, that kind of attraction with lust is not there.
लेकिन अजनबी में आती है, especially मैं बात कर रहा हूँ.
But when they are strangers, then that happens.
अगर ये ना हो ना, तो औलाद की जो अफजाइश है ना, जिसको क्या कहेंगे आप, उसका सिलसिला कैसे होगा जब दोनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन ही नहीं होगा, एक दूसरे के एक दूसरे की सेटिस्फिकेशन ही नहीं होगी? तो
इफ दैट अट्रैक्शन इज नॉट देयर देन द प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन विल स्टॉप. सो देयरफॉर अल्लाह हैज केप्ट दैट अट्रैक्शन बिटवीन स्ट्रेंज मेन एंड वीमेन.
तो ये सेटिस्फिकेशन जो कशिश है ना, ये नेचुरल ही है.
दिस अट्रैक्शन इज समथिंग दैट्स नेचुरल.
और इसके मिलने का टाइम और इस मिलने का जो एक प्रोसीजर है वो शादी है.
And to satisfy this attraction, there's a procedure, and that's nikah and marriage.
जब इनको आप without nikah सामने लाएंगे, तो वो कशिश तो बाकी रही ना?
And when without nikah you bring strange man and woman, even if they are cousins, they're still strange, and they are in comfortable environment or in privacy, so that attraction is not dead. That's still there, but there's no nikah.
तो नफ्स और शैतान साथ लगा हुआ है.
Nafs and shaitan are there with the person.
वो बुराई पर उकसा रहा है.
And they're motivating person to do evil.
और वो काम हो रहा है जिस काम के होने की शरीयत ने मना किया था.
And those things which Sharia has stopped are happening because they are intermingling.
फिर ऐसे कल्चर में वो काम हो जाता है जब कुंवारी लड़कियां माएं बन जाती हैं.
And then in these kind of cultures, those things happens when unmarried girls become mothers.
जहां ये कल्चर ज्यादा है ना, जो शरीयत की जहां पासदारी नहीं है, हग न पता नहीं वो हैंडशेक हाथ मिलाना और ये सारी चीजें जहां बेपर्दगी ज्यादा है, आप रिसर्च कर लीजिए, वहां पर कवारी लड़कियों के मरने की, नाजायज बच्चों के कचरों पर मिलने की और बच्चे जाया करने की, औरतों की खुदकुशियां करने की परसेंटेज उन ममालिक में ज्यादा है.
Any culture, any country where these freedoms, so-called freedoms are there of intermingling of sexes, you will hear that there are a lot of unmarried women becoming mothers. They commit suicide, they throw their newborn babies on the streets, and these kind of things happen.
बास औकात है ना, close cousin वो काम कर रहे होते हैं जो नहीं होना चाहिए था बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, और वो प्रेशर में होते हैं. वो माँ बाप को नहीं बता पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और माँ बाप नहीं समझ पा रहे होते कि इनके साथ क्या हो रहा है. अगर वो माँ बाप को समझाने बैठे तो माँ बाप डांट देंगे, शट अप, यू डोंट नो, ये प्यार करते हैं आपसे. अरे वेयर इज, क्या प्यार करते हैं आपसे? वो प्यार ऐसा होता है कि बच्चे शर्मिंदा हो जाए? नहीं होता ऐसा प्यार. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं खुलकर कैसे बोलूं आप लोगों को, मगर जो हो रहा है उसको समझाने की कोशिश करो. मेरी बात को समझना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा.
आई कैनॉट स्पीक वेरी ओपनली बट विद सम इंडिकेशंस आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स हैपन बिटवीन फैमिलीज, बिटवीन कजन्स. दे आर समटाइम कजन्स इन हु आर इन स्मॉल एज and they with other cousins who are of bigger age, and there are lot of wrong things happen, and due to fears they cannot tell their parents, they cannot speak out, and if they try to open their mouth, the parents would say, that's your brother, that's your sister,
like a brother, like a brother,
they're loving you,
like your uncle. Uncle, well, what do you mean for uncle? ఇది అంటీ, ఇట్స్ నాట్ అంటీ, ఇట్స్ అ డేంజర్ ఘంటి, డేంజర్ అలారం. వాట్ డూ యూ మీన్ ఫర్ అంటీ? వాట్ డూ యూ ఫర్ అంటా? నో అంకల్, నో అంటీ, ఏ నీయే, ప్లీజ్ ఏ లింగ్వేజ్ ఖతం కరే. జో షరియత్ రిష్టా బనాయా వహీ రిష్టా రఖే, అదర్వైజ్ కో రిష్టా నా రఖే.
షరియా హెజ్ నాట్ మేడ్ కజన్స్ యాజ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. డోంట్ కాల్ దెమ్ యు నో కజన్ బ్రదర్ అండ్ కజన్ సిస్టర్. దే నాట్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ద రిలేషన్షిప్ విచ్ అల్లా హెజ్ మేడ్ ఆఫ్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అండ్ మదర్ అండ్ సన్, just keep that as a relationship. Everybody else, even they are relatives, but they are strangers, they cannot be alone in privacy.
Sarkar sallallahu taala alaihi wasallam ke daste mubarak ne kisi ghair aurat ko kabhi bhi nahi chua.
The blessed hand of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has never touched any strange woman in his whole life.
Sahabiyat bait bhi karti, aurte bait bhi karti thi to haath mein haath dekar bait na kiya jata tha.
Even when sahabiyat made bayat with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it was never in the way that they would give hand in the hand of beloved Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Kya uncle, kya chacha, kya peer sahab, ke matlab jawan ladkiyon ki aur ajnabi auraton ke sar par haath pherna, haath milana, haath dena, haath chumna, completely prohibited in Islam. ये अजनबी औरतों के साथ, अजनबी औरतों से हाथ मिलाना, अजनबी औरतों के सर पर हाथ फेराना, हाथ चुमना, ये सब करना, ये पीर बन ही नहीं सकता. ये पीर बन ही नहीं सकता. ही इज अ सिनर.
इवन इफ ए पीर साहब शेक्स हैंड विद हिज
अजनबी
अजनबी स्ट्रेंज वीमेन और ही पुट्स हिज हैंड ऑन देयर हेड्स एंड एक्सेट्रा, दैट्स ए सिन ऑन इट्स ओन, एंड एन ओपन सिनर कैनॉट बी पीर साहब. So you must be, you know, educated enough who to take as your peer.
To ye samjhiye, aap apni bachiyon ko saanp se bachate hain?
Do you safeguard your daughters from snake?
To a small snake agar aapke ghar mein aa jaye to aap apni bachi ko bachayenge?
If a small snake comes in your house, would you safeguard your daughter?
Ye usko kahenge beta utha kar isko bahar nikalo.
Or would you say that, oh my child, pick up this snake and it's then throw it outside?
Small snake se khatarnak hai ye ajnabi mard.
This strange man is more dangerous than that small snake.
Chota saab aapki bachi ki jaan le lega, magar ye ajnabi mard uski izzat aur uska bahut kuch le lega.
The small snake can take the life of your child, your daughter, but this strange man can destroy the izzat, the honor, the dignity.
Itni si baat samajh mein nahi aati hum logon ko yaar, itni si baatein samajh mein nahi aati.
Can you understand this one simple thing?
Kya aap ajnabi auraton ko dekhte ho to aapki aankhon ko lazzat nahi milti?
When you look at strange women, don't you find attraction?
To dusra ajnabi mard aapki auraton ko dekhega to usko lazzat kaise nahi milegi?
And when other strange man will look at your women, you think he's an angel?
आपकी फीलिंग नहीं होती अजनबी बच्चियों से और अजनबी औरतों से मिलते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता? अपनी बीवी से लड़कर आए थे और दूसरी बीवी के साथ मुस्कुरा के बात करते, हाउ आर यू, हाउ आर यू.
व्हेन यू लुक एट स्ट्रेंज वीमेन, यू नो, यू फाइंड अट्रैक्शन. इवन इफ यू हैव अ फाइट विद योर वाइफ एंड यू डोंट टॉक टू हर, बट व्हेन यू कम आउट एंड यू लुक एट समबडी एल्सेस वाइफ, यू वेरी स्वीट विद हर.
आपकी बीवी अभी आपसे लड़कर आया, यू ओल्ड मैन, और अभी अजनबी मर्द से, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाँ बिरादर 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 पर देखा मुस्कुरा के बात कर रही है, शोर सभी लड़कर आई है. क्यों?
एंड द वाइफ हैज फॉट विद द हस्बैंड एंड टॉन्टेड ऑन हिम, टेलिंग हिम, यू ओल्ड मैन, यू लाइक दिस. एंड व्हेन शी कम्स आउट एंड शी फाइंड्स ए स्ट्रेंज मैन विद हुम देयर इज हेलो हाय, देन शी इज स्माइलिंग एंड टॉकिंग वेरी नाइसली एंड वेरी फ्रेंडली.
आप बात समझिए, घर में मियां बीवी में उमूमन ऊंच नीच होती रहती है.
यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन द हाउस देयर इज ऑलवेज some kind of disagreement.
Ek saath rehte hain, khate peete hain, barson guzar gaye to kuch na kuch hota hi rehta hai.
They live together under one roof for years and something will always happen.
Wo wife hai, wo girlfriend to nahi hai na, wo husband hai, ko boyfriend to hai nahi, kab tohfe dene ka na lene ka silsila jari rahega.
She is wife, she is not girlfriend, he is husband, he is not boyfriend. So there is no exchange of gifts or anything.
Aur aisa gift hai bhi haram, rishwat hai.
And this kind of gift that people, the girlfriends give to the boyfriends or the boyfriends gives to the girlfriends, that's a bribery. So that's haram.
ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं मियां बीवी हैं, अब जब ये अजनबी मर्दों से मिलेंगे, मिसाल के तौर पर मियां बीवी दोनों घर से निकले, एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात को समझिएगा, और ये लास्ट मेरा सेगमेंट है, ओके? और ये सेगमेंट अभी क्रिएट हुआ है, इट्स नॉट अ
प्री थॉट,
प्री प्लान नहीं था, ठीक है? तो ये सेगमेंट अभी क्रिएट हुआ, लेकिन समझ, एक सिचुएशन बना है, आपको दावत में जाना है.
Let's imagine a situation that you need to go to a party or wedding where you invite.
और आप देर से घर पर आए तो बीवी ने कहा ये को आने का टाइम है, जल्दी जाना था, दावत में देर हो रही है.
You came little late and the wife shouted at you and she said, "Is this the time for you to come? We were supposed to go and attend."
आपका भी मूड खराब था, आपने भी कहा, "Oh, ठीक है, don't shouting." Okay, okay, तैयार हो रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ. आप जल्दी का शावर लिया, तैयार हो गए, बीवी कब तैयारी हो रही है.
Now you also got angry, you also shouted, you said, "Okay, you get ready, I'll get ready." In that, you know, argument mood, you both got ready.
औरतों को तैयार होने में वैसे देर लगती है.
Women normally take long to get ready.
अब आपने शॉटिंग करना शुरू कर दिया, क्या हुआ? मुझे चिल्ला रही थी, जल्दी तैयार हो जा रहा, देर हो रही है, मुझे चिल्ला रही थी तब कुछ भी नहीं.
Now you started shouting at her saying, "You were shouting at me and I'm ready before you, now what are you doing now?"
चलो चलो चिल्लाओ नहीं, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. अब गाड़ी में बैठ गए, पों 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 पों, चलो ना, देर हो रही है, क्या कर रही हो? तुम्हारी आदत ऐसी है, जब देखो देर करती हो. लड़ रहे हैं दोनों, प्रॉपर लड़ रहे हैं.
They're fighting. Man goes in the car. He sits and he started, you know, pressing his hooter and showing his anger. You know, you taking so long. Look at the watch. What's the time? We getting late.
दावत किसी और की है, बर्बाद दोनों हो रहे हैं.
No, they're fighting. The dawat is of somebody else. Wedding is of somebody else. But they're destroying themselves.
चलो दावत पे पहुंचे.
Now they reach the occasion or the party wherever.
और वो बेशर्मी का माहौल जिसे आजकल कल्चर कहा जाता है, वो वाली दावत थी.
And the dawat was of that nature which is full of shamelessness, which is the culture of today.
अंदर गए.
They entered that area, that hall.
सारे बेपर्दा मर्द औरतें सब जमा हैं, मर्द जमा हैं, हल्की हल्की मौसीकी भी बज रही है.
All women are sitting there. There's no veil. Men sitting there, looking at each other. There's soft music playing.
अभी गाड़ी पार्क करेंगे, चलो थोड़ा मुस्कुरा लो, अभी दावत में जा रहे हैं.
Now they parked the car. They said, "Let's pretend. Let's smile." So
fake smile.
Yeah. So people can see us. We very happy.
Couple. Artificial manners.
Yeah.
ठीक है, अंदर गए. अंदर जाते ही वो गेस्ट आएंगे, आइए आइए भाभी, आइए आइए भाभी, आई भाई, यू लुकिंग वेरी गुड.
As they entered, the guest came and he welcomed and he looked at the wife of this man. He said, "Bhabhi, you're looking very good."
वो बेगरत मर्द सुन रहा है मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है.
And that immodest man is listening and he's also smiling that the man is praising my wife.
अच्छा, वो जैसे ही मर्द तारीफ करेगा ना, बीवी को उसका ख्याल लगेगा, ये कैसा कुत्ते की तरह काट रहा था और ये कैसा मोहब्बत से बातें कर रहा है.
Now immediately the thought will come in the mind of that woman, "Look at my husband, he was like biting me like a dog and there this man is so sweet with me."
वो उसका हाथ छोड़ेगी, फौरन मर्दों में चली जाएगी, जी भाईजान आप कैसे हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने. वो भी बोलेगा, अभी मेरी घर पे दावत, मेरी बीवी ने भी मेरे को झाड़ा था, ये कैसी अच्छी औरत है कि मेरी तारीफ कर रही है.
She leave the hand of her husband and she will go towards that man and say, "Bhaijaan, you also looking very nice." Now he will also think, you know, my wife was fighting with me. Look at this woman. She is so nice. She is praising me.
अच्छा, ये सारे के सारे घर में तकरीबन लड़कर आए.
So now they're going to each other's wives and each one is calling each other Bhaijaan, Behan ji, Baji ji. But they're looking at and praising their, you know, looks and their clothes and their, you know, how they are presenting themselves. And they're acting like they're very, you know, jolly kind of people. But everybody had a fight in their home.
वो थोड़ी देर के बाद आकर बोलेगा, भाभी आपने कुछ लिया नहीं, आपकी प्लेट खाली है, मैं लाता हूँ. वो जब वो बोलेगा, यार मेरा आदमी मेरा निवाला छीन लेता है, ये लाकर मेरे को प्लेट में डाकर दे रहा, कितना अच्छा आदमी है. और वहां वो औरत बोल रही होगी, ब्रदर योर प्लेट एम्प्टी, व्हाट इज दिस, नो यू आर अवर ओनर गेस्ट, ये भाईजान मैं आपको प्लेट भर के देती हूँ. वो बिरयानी के अंदर मुर्गी भी डाल के देगी.
And here the plate is empty. That man comes and he says, "Oh, Baji, oh, Benji, your plate is empty. Let me bring some food for you." And she'll think, "Look at my husband. He'll even snatch the morsel of my mouth that I'm putting." And this man is so nice. He's offering me food. And then woman goes and tells the man, and this is how they're developing, you know, relationship, untold relationship and attraction with each other.
Mujhe aap bataye, aisa mahol hai.
Do you agree that these kind of things are happening in our society?
Aisa mahol hai. Ab ye dono andar andar soch rahe honge ki yaar yahi meri biwi hoti to kitna acha hota. Aur wo soch rahi hogi ki yaar ye mera shohar hota to kitna acha hota.
In, you know, inwardly they're thinking, you know, woman is thinking, how nice if that man was my husband. And that man is thinking, how nice if this woman was my wife.
Ye phir bhul gaye ki dono miyan biwi nahi hai. Ye jab phir dono miyan biwi banenge phir wahi haal ho jayega.
And they have forgotten that they are feeling so passionate towards each other because they're not husband and wife. But the day if, for example, they become husband and wife, they'll be the same like everybody
else. Jab ye wapas gaadi mein aakar baithenge to kahenge, Mrs. So-and-so ko dekha tha, kisi polite aurat thi. Aur jab biwi bolegi, wo Mr. Fulan ko dekha tha, kaisa humble mard tha. Tumko dekho, wo bolega, tumko dekho, dono ladte hue aaye the, dobara ladte hue jayenge.
So when they go sit in the car and she will say, did you look at Mr. So-and-so, how humble he was? And he will say, did you look at the Mrs. So-and-so, how nice she was? And now they start fighting again.
Family tabah hoti hai, nahi hoti. Mind gaya, mard ka kisi aurat ki taraf, aurat ka kisi mard ki taraf. Aur ye continue jab hoga, mujhe batayen ghar kaise chalega.
If this keeps on happening continuously, then tell me how the home will run successfully.
क्योंकि हमने इस्लाम की जो नेचुरल एजुकेशन है उससे हटकर जो वेस्टर्न कल्चर है उसको एडॉप्ट किया. आज जितना वेस्टर्न कल्चर के अंदर सेपरेशन है और डाइवोर्सेस हैं, वो अब भी उस कल्चर में नहीं है जो प्योरली मुस्लिम कल्चर होगा. वहां फैमिली कल्चर खत्म हो रहा है, वहां फैमिली कल्चर डिमोलिश हो चुका है. Family infrastructure completely demolished in all most Western countries. But in Islamic culture, alhamdulillah, many things is all right. So please, don't go to anywhere. And completely deen mein dakhil ho jaiye. Aur is tarah ki cheezon ko chhod dijiye. Ye jo मतलब डिफरेंसेस जो इस्लाम ने जो पैदा किए हैं मर्द और औरत के अंदर उसको बाकी रखिए. जो दीवार इस्लाम ने बनाई है उसको बाकी रखिए. अब दीवार गिराएंगे तबाही आएगी. दीवार ना गिराएं. अजनबी मर्द अजनबी औरतों के दरमियान दीवार है. औरत को चाहिए अपने घर में रहे, जरूरत से बगैर घर से ना निकले. अगर घर से निकलना है तो पूरी के पूरी इस्लाम के हुक्म के मुताबिक निकले, अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, अपने शोहर को खुश करे. अगर औरत मरती है इस हाल में कि इसका शोहर उससे राजी है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है. तो ऐसा घर में माहौल ना बनाए. बीवी को चाहिए कि शोहर की इताअत करे, फरमाबरदारी करे, इसकी खिदमत करे, क्योंकि वो शोहर है. और मर्द को चाहिए कि अपनी औरत के हक अदा करे, इस पर जुल्म ना करे, इस पर ज्यादती ना करे, और इसकी जायज हाजतों पर शफकत करे. मगर कहीं भी दोनों तरफ से प्रेशर डेवलप ना करें. इंशाल्लाह आपका घर मोहब्बत का गहवारा रहेगा. मर्द को चाहिए गैर औरतों से कोई ताल्लुक ना रखे. बीवी को चाहिए गैर मर्दों से ताल्लुक ना रखे. खा वो दावत में हो, खा वो सोशल मीडिया पर हो, खा वो किसी और जरिए से हो, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा ताल्लुक ना रखे. इंशाल्लाह आपका घर मोहब्बत का गहवारा रहेगा, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत रहेगी, और इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी. अल्लाह ने चाहा तो आखिरत भी अच्छी हो जाएगी.
The women should make sure that they look after their husbands, fulfill their rights, look after their properties and children and honor them. And it is the responsibility of men to fulfill the rights of their wives and look after them and also honor them and dignify them. If we live our lives
in this way, in the light of Quran and Sunnah and the way our deen have taught us, then inshallah azza wa jal, your house will become a living paradise.
Ab tak jo hua, Allah se sachi toba kare.
And if we have violated so far any of the Islamic rules in, you know, marriage relationship, we must repent.
Islami behnon ko chahiye ki jitni bepardagi hui hai, jo bhi shohar ki nafarmaniyan hui hain, aulad ki tarbiyat mein Allah ki nafarmani hui hai, sabse Allah ke huzur toba kare.
And Islamic sisters, if they have remained unveiled and came in front of ghair mahram men and became a cause of attraction, and if they have violated the rights of their husbands, they all must repent and make tawbah in the court of Allah azza wa jal.
Aur aise hi tawba mard bhi kare.
And similarly, the men should also make tawbah.
Aur daawat islami ke maddi mahol se sare wabasta ho jaye.
And all are requested to join the mahol of daawat islami.
Walidain ko chahiye ke apne aap ko Mola Ali aur Fatima Zahra radhiyallahu ta'ala anhuma ke saanche mein dhale.
The parents should mold themselves in the character of Hazrat Sayyidina Ali al-Murtaza Sher-e-Khuda radiyallahu ta'ala anhu and Bibi Fatima al-Zahra radiyallahu ta'ala anhu.
Aur aulad ko chahiye ki apne aap ko Imam Hassan aur Hussain ke saanche mein dhale.
And the children should mold themselves in the character of Hazrat Sayyidina Imam Hassan and Hazrat Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhuma.
Deen se wafa kaise karni hai, Hassan aur Hussain sikhate hain radiyallahu ta'ala.
How to be faithful to the deen, Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain will teach you.
Aur walidain ki mohabbat aur walidain ki izzat kaise karni, wo bhi Hassan aur Hussain sikhate hain radiyallahu ta'ala.
How to love and respect the parents, that too Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain will teach you.
اولاد کس طرح دین پر قربان کرنے کا جذبہ پاتی ہے یہ تربیت مولا علی اور فاطمہ زہرہ سکھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما.
How the children get training to sacrifice their lives on deen, that you will learn from the teachings of حضرت سیدنا علی المرتضی and حضرت بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما.
اللہ قریب ان کے فیضان سمے مالا مال فرمائے.
May Allah سبحانہ وتعالی bless us with their beneficence and their barakah.
Aap daawat islami ko apnaiye. Aap dekhiye jagah hi dekh lijiye, yahan rehne wale sochte the ki yahan koi hamari masjid hoti. Daawat islami ne aapko masjid banake de hi di na.
Look at the barakah of working together with daawat islami. Few months ago we were just thinking that there should be a place for the ashkane rasool in this area to read namaz. Within few months, it's the barakah of the work of Dawat Islami, you got a masjid here.
Alhamdulillah. Bob, mujhe yaad hai aaj se kuch chand saalon pehle jab hum yahan the to masjidain nahi thi, masajid nahi thi. Yahi Sufi Nagar Durban mein Sufi sahab ki masjid mein unne elan kiya tha ki inshallah hum 112 masajid banayenge.
His Eminence says that when they started coming into this country, we felt that there is shortage of masajid. And in this very same town of Sufi Nagar, His Eminence announced that inshallah we will build 112 mosques in this country.
And that time my Islami brother, they were shocked. Yes. How can?
They were shocked and they were saying, how is this possible?
But now he's watching. It's not only possible, it's easy. It's not only possible, it's easy.
Those who are shocked, they can see that it's not only possible, it's actually easy.
Not Overport Masjid, now Phoenix, Medan Medina, and now this in Joburg, to Lodium Pretoria, to Welcome, to Bidbang, and many now Cape Town.
Soweto.
Soweto. So alhamdulillah. Eh?
PMB.
Pietermaritzburg. So alhamdulillah, within a few years, 5 to 6 or 7 years, alhamdulillah rabbil alamin, our Islamic brothers, they made almost 50 masajid and madni marakiz in South Africa. So aap daawat islami ke madni mahol se wabasta rahe.
Please stay in touch with the mahol of daawat.
Dekhe masjid ban gayi, namazi kaise aayenge?
Masjid is built up, how the namazis will come?
Namazi aayenge neki ki daawat dene se.
Namazi will come when you go out and give dawat to people, come to the masjid.
Namazi banenge madni kafilon mein safar karane se.
And when you take people to travel in madni kafilas, then people will become punctual with namaz.
So namazi banenge
घर में और मस्जिद में दर्स देने से.
And when you give dars in the masjid and in the house, the people will become namazi because they continuously they are reminded.
When namaz ki mohabbat badhegi, deen ki mohabbat badhegi, to masjid abad hogi na.
And when the love of namaz and love of masjid and love of deen is increased, then only the number of namazis will increase.
Aur inki namaz aur inka quran aur inki ibadat aur inki taharat durust hogi madrasatul madina balighan mein aane se.
And when they attend Madrasatul Madina for adults, then their recitation of Quran is corrected, their method of purity, impurity, how to perform namaz, all these things are taught to adults. That classes take place in the masjid for everyone.
Aur aqaid, nazariyat, amal, knowledge, in sab mein behtri aayegi madani inaamat par amal karne se.
And when you practice upon Madni Inamat, it's a self-reckoning or improvement program that Dawat Islami offers, then inshallah you'll become strong in Aqeedah, in knowledge, and in your Islamic actions.
Aur aapko in tamam cheezon ki proper motivation milegi jab aap weekly ishtima mein shirkat karenge aur weekly Madni Muzakara dekhenge.
And you will get motivation for all these good activities if you with punctuality attend the weekly sunnah inspired ijtima of Dawat Islami and watch Madni Muzakira and learn directly from Amir Ahl Sunnat.
To aap Dawat Islami ke madani kaam bhi kare aur usme shamil bhi rahe, dekhiye inshaallah aulad bhi farma bardar banegi aur maa baap ko aulad ki tarbiyat karna bhi aa jayegi.
Stay in touch with the mahol of Dawat Islami, inshaallah your children will become obedient and the parents will learn how to bring up their children in proper Islamic way.
اللہ کریم اس مسجد کو بنانے والے, اس مسجد کو خرید جگہ خریدنے والے, تعاون کرنے والے اور آئندہ تعاون کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں تو کا ہو کرم بہر خاکے